सेकेंड क्या वर्ष के बराबर है, बड़ा मूल्यवान है, और तुम्हारा एक एक संकल्प महान है। क्या है माताएं बोले, तुम्हारा एक एक संकल्प महान है। ये दो बातें कहते रहे ना बाबा कई साल से, कह रहे ऐसे तो सदा ही कहा है पर कई साल से विशेष रूप से इसे कहते हैं। तो मैं देखता हूँ सबको साक्षी होके कि लोग बैठे हैं जहाँ चाय पीने आते हैं ना हमारे वहाँ ज्ञान सरोवर में भी, तो अच्छी महफिल लोगों की लगती है और वो महफिल एक डेढ़ घंटा चलती है और कई लोग उसमें शामिल होते हैं। जो शामिल नहीं होता उसे लगता है मैं थोड़ा सा अलग हूँ उनसे, शामिल होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, देखा इतनी अच्छी महफिल में ये हिस्सा ही नहीं ले रहे। सब बड़े खुश होके उठ जाते हैं। मैं सोचता हूँ इनमें से किसी को भी ये याद नहीं है कि तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। रोज का काम है वो उनका, मूल्य वो भी सुनते हैं रोज, लेकिन ये बात सबके अंदर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? जाती नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्यों नहीं जाती है? और बोलो बोलो जरा, और कुछ बोलो। हाँ देखो इसने उत्तर दिया यथार्थ, जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं है। जब तक मनुष्य अपने जीवन का अच्छा लक्ष्य न बनाए तब तक उसका ध्यान इन चीजों पे नहीं जाता है। वो तो दो चार घंटे तो ऐसे ही पूरे कर देता है हर मनुष्य जीवन में, क्योंकि उसे महान लक्ष्य नहीं है। और उसमें भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ जमा करनी है। ये शक्तियाँ हमें बहुत काम आएंगी, ये शक्तियाँ हमें निर्विघ्न रखेंगी। इन शक्तियों के आधार से ही हम समस्याओं पर विजयी हो सकेंगे, नहीं तो संसार में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। माताओं के पास कौन सी समस्या होती है बोलो, सबको पता है, मैं बताऊंगा तो है बच्चों की, विशेष रूप से पति की भी होती है लेकिन बच्चों की भी बहुत होती है। कैसे ये समस्या हल होगी? देखो समस्या उनकी है पर चिंता माँ को होती है, होगी भी। कैसे हल होंगी ये समस्याएं? योग बल से, योग बल से। बिना योग बल के समस्याएं जाएंगी नहीं। देखो एक अनुभव सुनाऊं आपको। यूपी का एक भाई मुझे 5 दिन पहले फोन किया, मेरा लड़का क्रिकेट खेलता है तो रेलवे की ओर से क्रिकेट में सिलेक्शन होना था, 4 बार हुआ, चारों बार वो फेल रहा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आजकल खेलों का भी तो बड़ा क्रेज है ना बच्चों को, उसमें पैसा भी अच्छा मिल जाता है और सब कुछ ठीक रहता है। तो कहा कि वो बिल्कुल उदास हो गया है, बिल्कुल उदास और चिड़चिड़ा भी हो गया है, घर में सोया रहता है, हमें उसकी बहुत चिंता हो गई है क्या करें। तो आप ही कहा कि हम स्पोर्ट्स विंग में आ रहे हैं, उसको भी ले आते हैं, तो उसको ले आए। तो कल उसका बाप और 2-3 लोग मुझे सारा बताया, जैसे बहुत मेहनत की लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, इससे सारे घर का वातावरण बहुत निगेटिव हो गया, वो इतना उदास है जैसे मृत्यु हो किसी की। तो फिर आज वो, तब वो उसको नहीं लाए थे, फिर आज वो अपने एक दोस्त के साथ आए मिले, एक बीके और ये भी बीके नहीं, वो जो बीके है वो भी क्रिकेट खेलता है, उसको भी था कि मुझे सफलता मिले, उसका सिलेक्शन हुआ है कहीं। राजस्थान जूनियर टीम होगी कोई उसमें, रणजीत ट्रॉफी की कोई जूनियर टीम है। तो मैंने इससे बात की, फिर इसको जरा उमंग भरा, निराश था ना बहुत, तो मैंने उसको उदाहरण दिया कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण दिया मैंने, सबके लिए वो उदाहरण है, युवकों के लिए तो खास, जिसने बल्ब का निर्माण किया वो वैज्ञानिक, उसका उदाहरण मैं देता हूँ सदा। माताओं के लिए उदाहरण है, माताओं को पता नहीं ये लाइट जो जलती है ये पहले नहीं थी ना, देखा होगा घरों में दीपक जलते थे, लालटेन जलती थी, हमारे देखते देखते लाइट बहुत हुई, गांव गांव में लाइट पहुंच गई, सब चमक गया। जिसने लाइट की खोज की बिजली थी, अब बिजली को चेंज करना था लाइट में, ये सिद्धांत खोजना था उसको कि बिजली प्रकाश में बदल जाए, ऐसी थ्योरी उसको खोज करनी थी। बिजली से और काम होते थे सब, जैसे चक्की चलेगी, छोटे छोटे काम शुरू हुए थे, बहुत सारे काम तो पिछले 50 सालों में हुए, उससे पहले छोटे छोटे काम चालू हुए थे। तो एक युवक वैज्ञानिक हुआ थॉमस एडिसन, उसने बल्ब का निर्माण करना प्रारंभ किया, 1000 बार वो असफल हुआ, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। देखो कितनी बड़ी चीज है, मनुष्य 10 बार असफल हो जाए तो निराश हो जाएगा ना, फेल होते ही योग भी न लगे तो योग लगाना भी छोड़ देते हैं, और कोई काम कर रहे हो उसमें सफलता न मिले उसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो निराश नहीं हुआ और वो उसके पीछे लगा रहा। और आज संसार जगमगा उठा है लाइट से, ये उसकी देन थी। ट्यूब बनी है जो भिन्न भिन्न तरह के डेकोरेशन की, ये सब बात किसी को तो उससे बन गई फटाफट, अब तो इन्हें बल्ब बनाने थे मोटे, उसको सुंदर रूप देना था, पर वो सिद्धांत जिसने विज्ञान के क्षेत्र में दिया वो 1000 बार फेल हुआ उसने, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक व्यक्ति विदेश का है, उसने बहुत सारा साहित्य लिखा, तब ये प्रिंट करने के साधन नहीं थे, उसे जो लोग ईर्ष्या रखते थे उन्होंने उसकी लाइब्रेरी जला दी। अब लोग उसके पास पहुंचे, भाई ये बहुत उदास होगा, इसकी सारी किताबें जला दी, क्या करें? उससे कहा, उसने उत्तर दिया, नहीं मैं न उदास हूँ न निराश हूँ, मैं सोच रहा हूँ फिर से मुझे लिखने का मौका मिलेगा, मेरी बुद्धि और अच्छा काम करेगी, मेरी बुद्धि का विकास हो जाएगा। उसने इसको इस रूप से लिया, उसने जो कुछ दोबारा लिखा वो पहले से और सुंदर हो गया था। तो जीवन में कभी भी निराशा ना आए, अपने जीवन को सुखी रखना, अपने परिवार को सुखी रखना अपने हाथ में है। क्या विचार है माताओं का, ठीक है ये बात या नहीं? हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता, आगे आगे आना है सबको आगे, हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। दुखी मनुष्य होता है, उठो आगे हो, पीछे वाले गए उठ जाओ, उठ जाओ, भारी तो आप नहीं है जो उठने में देर हो, भारी कोई माता होती नहीं कैसा, बैठ जाओ, पंखे चाहिए, पंखे चाहिए माताओं को, थोड़ा पीछे का जला दो। सुखी रहना, सुखी अपने को रखना, ये अपने स्वयं के हाथ में है। कुछ एक सिद्धांत बनाए जीवन के जिससे हम सुखी रहेंगे। पहला सिद्धांत मैं एक बताता हूँ, फिर आप चिंतन करेंगे। जो मनुष्य निगेटिव सोचता है, निगेटिव समझते हैं समझते हैं उल्टा सोचना, जो मनुष्य निगेटिव सोचता है वो कभी सुखी नहीं रहता, वो हर अच्छी बात में भी क्या करेगा, उल्टा ही सोचेगा। मधुबन में भी आए हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे यहाँ भी, देखा ये लोग यहाँ रहने वाले ये तो अच्छे नहीं है, किसी का कोई अवगुण देखेंगे, किसी का कुछ देखेंगे, इन्हें जरा जोर से बात कर ली, नहीं ये सब कैसे हैं लोग, कुछ आप तो करते ही नहीं, किसी को भोजन पे बात करते देख लिया कि नहीं इनसे तो हम अच्छे, ये तो भोजन भी योग युक्त नहीं खाते। कई सुनाते हैं मुझे कि वो पहले भोजन योग युक्त खाते थे, तो इन्होंने बेल्ट बांधी है जरा टाइट हो गई। तो कईयों ने मुझे सुनाया कि पहले घर में वो भोजन योग युक्त खाते थे, यहाँ आए सेवा में देखा यहाँ तो सब ऐसे ही खाते हैं, तो हमने भी छोड़ दिया, ये सीख लिया यहाँ से कि भाई वो बात करते हुए भोजन खा रहे, हम बिना मतलब से अंत में रह के खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, योग करो ये अभ्यास करो, देखा है तो सब लोग मौज मौज से खा रहे, हम भी ऐसे ही खाएंगे, ये नेगेटिव अप्रोच हो गए। नेगेटिव रूप से देखना, अपनी अच्छी धारणाओं को भी छोड़ देना, लेकिन अपनी अच्छी धारणाएं छोड़ना नहीं है। एक नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति हर जगह, स्वर्ग में भी अगर उसको ले जाओ तो वो कहेगा देवता बड़े भौतिकवादी हैं। एक विदेशी आया हमारे म्यूजियम में, जब हम लोग म्यूजियम में जाया करते थे रोज समझाने, तो वो एक बात से बड़ा दुखी था कि तुम्हारे जो देवी देवता हैं भारत वालों के, इनके इन्होंने हार पहने हुए हैं, यहाँ भी सजे हुए, कानों में भी हाथों में भी, ये तो सब भौतिकवादी हैं, समझ गए ना, बात तो ठीक थी उसके, ये तो सब भौतिकवादी हैं, खाने पीने वाले हैं, आराम करने वाले हैं, इनको तुम क्यों पूछते हो, उसे पता नहीं था कि हम पूछते नहीं, वो पूछ रहा था इनको तुम क्यों पूछते हो, क्या उत्तर देंगे। आज भी हम कह देते हैं ना, क्योंकि क्राइस्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, क्रिश्चियन धर्म का रचने वाला है ना क्राइस्ट, उसने एक बड़ी बात लिख दी, उसने कहा सुई की नोक से ऊंट का निकलना यदि संभव भी हो जाए, निकल नहीं सकता, अगर वो भी संभव हो जाए तो भी साहूकार लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, उनका जाना असंभव है, ऊंट का सुई की नोक से निकलना संभव भी हो जाए लेकिन साहूकारों का स्वर्ग में जाना संभव नहीं है। तो पूछता था ये सब तो बड़े साहूकार हैं देवता, ये स्वर्ग में कैसे, तो हमने तो उसको तब क्या समझाया था वो तो याद नहीं, लेकिन ऐसे लोग संतुष्ट नहीं हुआ करते, उनकी अपनी मान्यता को लेकर बैठे रहते हैं। तो देखिए देवताओं के पास पथा धन संपदा है लेकिन वो भौतिकवादी नहीं है ना, पथा धन संपदा है नहीं, संपदा भी सोना हीरे खाने पीने के बड़े बड़े महल बड़े बड़े बाग बगीचे सुख ही सुख होंगे वहाँ, लेकिन वो भौतिकवादी नहीं है क्योंकि वहाँ देह अभिमान नहीं है। देवताओं को आत्माभिमानी ही कहा जाता है। यहाँ संगम युग पर हमारे पास जो कुछ भी है उसमें भी अनासक्त भाव रखना, ये ज्ञानी आत्माओं की योगी आत्माओं की पहचान है कि जो कुछ हमारे पास है उसे हम यूज तो करेंगे ही परंतु उसमें आसक्त नहीं, और यही बड़ी बात परिवार के लिए सभी अपनाएं कि अपने परिवार में अपने बच्चों को आप सहयोग तो देंगे, उनकी समस्याओं को भी हल करो, उन्हें पूरी पालना दो, लेकिन इसके बाद भी उनका अपना अपना भाग्य है ना, उनके भाग्य को तो कोई बदल नहीं सकता, वो भाग्य लेकर ही जन्मे हैं, इसलिए उनके ऐसी ऐसी चीज को देखकर दुखी रहना ये समझदारी नहीं। एक माता ने मुझे फोन किया, कहा देखो मेरी एक ऐसी समस्या है, आप ही कहने लगी आप भी हंसोगे उसको सुन के, लेकिन इसका हल मुझे बताओ। बच्चा है एक साल का, कहा मैं उसे प्यार करती हूँ ना, वो दोनों ये नाखून से एक मेरे यहाँ मारता है। मुझे उसको दूर रखना पड़ता है। बच्चों के नाखून भी तेज हो जाते होंगे, नहीं काटते होंगे। कहा वो बिल्कुल तैयार रहता है एकदम यहाँ झपट्टा मारने के लिए। क्या करूँ मैं इसको? कहने पर ऐसी ऐसी समस्याएं बच्चों की आजकल आती है। एक ने दूसरे ने फोन किया, उसका भी छोटा बच्चा है, माता के गले में चेन है सोने की और लॉकेट डाला हुआ, वो इसको पकड़ता है और छोड़ता नहीं, ऐसे ऐसे करता है। तो इसका जो पति है वो कहता है हंसी में जान में कि ये लड़का पिछले जन्म में चोर रहा है, इसने माताओं की चेन खींची है, वही संस्कार लेके आ गया, तुमसे ही शुरू कर रहा है। उसको भी उन्हें दूर रखना, वो बस उसको गोद में ले मार, वो उसका ये पकड़े। तो क्या करे एक साल के बच्चे का? अब माताओं से उत्तर चाहिए। एक साल का बच्चा है, माँ के प्यार को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा, उसको मारता है जोर से, क्या करे वो माँ? मैंने भी उसको यही बताया कि देखो ये आत्मा आपसे हिसाब लेने आई है, आपने इसे कष्ट दिया है, हो सकता है इसी जन्म में आपने उस आत्मा को, उसका पहला जन्म हो, पूर्व जन्म हो, आपका ये जन्म आपने, सोच लो किसको कष्ट दिया बहुत, वो आपका बच्चा बनकर आ गए, ये छोड़ूंगा नहीं, कहाँ जाओगे देखता हूँ। तो पहले तो मन ही मन उससे क्षमा याचना करो, मैंने तुम्हें कष्ट दिया, मैं क्षमा याचना करती हूँ, और उसको वाइब्रेशन भी देने जरूरी है ताकि उसका चित शांत हो जाए, सुधार हो जाए उसमें। ये आजकल बहुत चलती हैं ये सब चीजें, ऐसे बच्चे हो रहे हैं कि जो हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव का अर्थ होता है बहुत तेज तड़ाक, जो देखेंगे उठाएंगे फेंकेंगे, उनके आगे घर में कुछ रखा नहीं जा सकता, वहाँ घड़ी भी देखेंगे उठाएंगे फेंकेंगे, लैपटॉप देख लिया उनका पहला काम है उसको उठा के फेंकना, इसको हाइपर एक्टिव कहते हैं। इसके भी तरीके हैं, मैंने दो केस देखे ठीक हो गए बिल्कुल, पिछले इसी साल पिछले साल बिल्कुल ठीक हो गए बच्चे, जो वो बहुत ज्यादा सोचते थे, पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ने का उनका प्रश्न ही नहीं है, ब्रेन एकदम तेज काम कर रहा था, वो बिल्कुल शांत हो गया। हमारे वाइब्रेशन में इतनी बड़ी शक्ति है, अपनी शक्तियों को पहचान कर सभी अपने अपने परिवारों की समस्याओं को हल करेंगे। सभी को ये याद रहे कि हर समस्या को योग बल से ठीक किया जा सकता है, इतनी बड़ी समस्या हो योग बल से ठीक होगी। अभी अभी मुझे फोन था शाम को, अभी एक लड़का फोन कर रहा था, सीए का उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, सीए करते हैं ना आजकल कॉमर्स वाले, तो मेरे से उसकी माँ ने पूछा था भाई क्या कराए इसको, मैंने उसकी माँ को बताया तुम तो करो रोज एक घंटा योग, और उसको रोज स्वमान सिखाए, लड़का ज्ञान में है। अभी मुझे फोन करके बताया बॉम्बे का कि हमारे सारे एरिया में बहुत स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, केवल मेरा सिलेक्शन हुआ है अकेले का, अब आगे मैं क्या करूं वो पूछ रहा था, अब तीन साल में सीए होगा आगे मैं क्या करूं। तो हमारे योग में स्वमान के संकल्पों में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। मैं आपको छोटी छोटी बातें सुना रहा हूँ। एक कन्या का फोन था अभी शाम को ही, कहा उसको भी अभ्यास सिखाए थे, दो अभ्यास हैं बहुत अच्छे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बहुत सुंदर स्वमान है। तीसरा भी है मैं वेद में विनाशक हूँ, तो उसको भी टीचर के लिए सिलेक्शन होना था, तो उसने मुझे फोन किया आज कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे डर लग रहा है। देखो मनुष्य को अनुमान कैसा होता है कि सोमवार को, अभी सोमवार को उसको ज्वाइन कर लेना है, अब क्या हो गया सेटल है, कल की छुट्टी एक ही दिन है पूरा हो गया, उसको डर लग रहा कि मेरी जगह कोई और न ले ले। मैंने कहा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो कमेटी दूसरों को थोड़ा ही रखेगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो अभी निश्चिंत हो जाओ, अपने मन में विश्वास पैदा करो मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो भय कहीं भी अपने मन में रखना नहीं है। आजकल संसार में दो चीज बढ़ती दिखाई दे रही है, भय और आत्मविश्वास की कमी। युवकों में एक और चीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत हीन भावना बहुत युवकों में ये आती जा रही है। आपके बच्चे आपको ये बात नहीं बताते, हीन भावना होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, बहुत सोचते रहते हैं। तो हमें माताओं को खास एक तो अपने परिवार में भोजन के द्वारा सबको बल देना है, और अगर माताएं अपने अपने परिवारों में रोज भोग लगाए एक बार तो अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैंने कुछ विकट परिस्थितियों में माताओं से सवेरे 4 बजे भोग भी लगवाया, 7 दिन तक 4 बजे, और उन्होंने लगाया बाबा को भोग और 7 दिन में ही वो विकट समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें हम बाबा की अटेंशन को अपनी ओर खींच लेते हैं। भोग भगवान खाता नहीं कुछ, लेकिन क्या पहुंचता है उसको, प्रेम और भावनाएं हमारी, उसके रिटर्न में वो हमें शक्तियां दे देता है, हमारी अनेक समस्याओं को हल कर देता है। बाबा की शक्तियां बहुत जबरदस्त हैं, हमें उसको ग्रहण करना आना चाहिए, हमारा उससे कनेक्शन होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, द्रौपदी की तरह हाल होता है। क्या हाल हुआ था द्रौपदी का है? एंड में याद आया, द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, पहले भीष्म पितामह के हाथ सामने पहुंची हाथ जोड़ के, अब वो वहाँ कायर बना बैठा था, वैसे बड़ा बहादुर, लेकिन उसके परिवार में उसकी एक बहू को ऐसा बुरा हाल किया जा रहा, वो आंख बंद करके बैठा है। ऐसा हो गया ना, ये तो खड़ा नहीं हो सकता था, ये क्या कर रहे हो, भाग जाओ, उसको खड़े होते ही सब भाग जाते वहां से। लेकिन ये उसकी कायरता दिखाई है, और ये कायरता क्यों आई, उसने दुर्योधन का अन्न खाया था। ये सबको ध्यान रखना है, किसी पापी का अन्न खाने से ऐसी कायरता मनुष्य के अंदर आ जाती है। द्रौपदी फिर द्रोणाचार्य के पास पहुंची, धृतराष्ट्र के पास पहुंची, कहीं से कुछ नहीं मिला तो श्री कृष्ण को याद किया, और फिर कहने लगी उलहना दे रही, थैंक्स तो दिया ये, पर उलहना भी दिया, तुम बहुत देर लगाते हो। क्या कहा श्री कृष्ण ने, देर मैंने नहीं, किसने, तुमने लगाई, तुमने जब मुझे याद किया मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, देर तुमने लगाई। पहले किनके पास गई, दो भुजा वालों के पास, अब बाबा के सब पहले जब जाते हैं हम सब दो भुजा वालों के पास, जब काम नहीं बनता तो 1000 भुजा वाले के पास, ये गलती होती है। तो बाबा हमसे कितना प्यार करता है, वो निरंतर हमें मदद देने के लिए तैयार रहता है, उसकी नजर अपने हर बच्चे पर है, जैसे आप सब माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, करते हैं या नहीं मदद, रात को 1 बजे भी कुछ हो जाए लेकिन हॉस्पिटल जाएंगे या नहीं, ऐसा न भी हो तो भी इंतजाम करके जाएंगे, करते हैं ना, अपना जेवर भी बेच देंगे। भगवान तो प्यार का सागर है, और हमारा सच्चा माता पिता है वो भी हमें बहुत प्यार करता है, और वो कभी नहीं चाहता कि हम उसके बच्चे दुखी हों, परंतु हम उसके पास पहुंचते नहीं हैं। अब आपका बच्चा बीमार हो, आपके पास तो न पहुंचे, अपने दोस्तों के पास जाए, आप कुछ कर पाएंगे, अगर हम बाबा के पास जाएंगे ही नहीं तो वो हमारी बात सुनेगा कैसे, उसमें हमें मदद करेगा कैसे। तो दोनों चीजें हैं उसके पास, कुछ आत्माओं को वो निरंतर मदद करता है और कुछ को, अब ये उत्तर कौन देगा देखो, कुछ को बिल्कुल नहीं करता, छोड़ देता है समस्याओं में, डाल देता है तूफानों में। क्यों डाल देता है? शक्तिशाली बनो, आग में डाल दिया है, अब निकलो इससे, तूफानों में फेंक दिया है, अब बाहर आओ तुम, सागर में डाल दिया, लहरें चल रही हैं, डूबने का डर है, अब निकलो। कुछ को ऐसा करता है, किनको? जिसे उसे, जिनके हाथों में उसे स्वर्ग सौंपना है, दो युग तक के लिए सौंपना है ना, ऐसे वैसे के हाथ में सौंप दे तो 100 साल में उसे भी नर्क बना देंगे, 2500 साल चलेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल आग में तपी हुई आत्माएं, माया को बिल्कुल नष्ट की हुई आत्माएं, तूफानों को पार करके शक्तिशाली बनी आत्माएं, वो जिम्मेदारी संभालती हैं संसार को संभालने की। तो दो काम करता है बाबा, वहाँ कहीं बाबा कहते हैं बाबा मदद करो, भागा चला आता है, ये भी सत्य है, बिल्कुल भागा चला आता है, मदद करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसे मदद के लिए कहो और वो चुपचाप बैठा रहे कि तुम्हें नहीं करूँगा। चाहे आपने उसके कार्य मदद की है या नहीं की है, वो तो बना हुआ है निरंतर मदद करने के लिए, लेकिन कुछ आत्माओं को वो छोड़ देता है। तुम शक्तिशाली बनो, महान योगी बनो, स्वमानधारी बनो, ज्ञान युक्त बनो और इन समस्याओं को पार करो, तो तुम्हें बड़े बड़े अनुभव हो जाएंगे, तुम दूसरों की भी नैया तेज भैया बन जाओगे। अब दोनों ही बातें अच्छी हैं और दोनों सबके सामने आती भी हैं। ऐसा नहीं उनको वो मदद नहीं करता, अगर देखता है ये कहीं कमजोर पड़ रहे हैं तो उनको भी निकाल देता है, लेकिन फिर उन्हें अग्नि परीक्षा से पार कराकर बहुत शक्तिशाली बनाता है। आपने देखा हो एक छेनी होती है लोगों के पास जो लोहे का काम करते हैं ना, हमने देखा वो बागड़ी होते हैं ना, यहाँ पर डेरा डाल के लोहे का सामान बनाते हैं, तो हम लोग उनसे खरीद लेते थे शुरू में। गोपाल भाई जो आजकल नीचे है, हम लोग जो भी काम काज की होती थी ना छेनी हथौड़ी, उनसे सस्ती मिलती थी, तो हम देखते थे वो छेनी कैसे बना रहे हैं। वो एक हमें दी तो दूसरे तैयार कर रहे हैं, लोहे को गर्म किया, उसको थोड़ा पतला किया पीट के और पानी में डाला, फिर दोबारा लोहे उसी को गर्म किया, लाल हो गई वो, फिर उसको पीटा, फिर पानी में डाला। अब वो छेनी लोहे की चीज इतनी मजबूत हो गई, लोहे को काटने में काम आने लगी। तो बाबा भी हमें इस तरह शक्तिशाली बनाते। मैं भी देखता था उन्हें, मैं सोचता रहता था कि देखो लोहे को लोहे से काटना है तो इस लोहे को कितना पावरफुल बनाया जा रहा है, और ये बिना पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इसे पावरफुल कैसे बनाया जाता है। तो बाबा हमें बहुत मदद कर रहा है और बाबा अपने कुछ बच्चों को इतना योग्य भी बना रहा है। याद करो बाबा की एक बात, मुरली में भी आ चुकी है 3 साल पहले, यहाँ हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की है। जब भक्त दुखी होकर बाप को पुकारते हैं तो बाबा बच्चों को याद करते हैं, बच्चे तो याद करते ही हैं, पर भगवान भी अपने बच्चों को याद करता है कि जाओ इन्हें सकाश दो, इनको शांत करो, ये दुखों में तड़प रहे हैं, इनके दुख दूर करो। और आपको एक रहस्य और मालूम हो, कुछ महान आत्माओं पे उसकी नजर है यहाँ, और उन पर ही उसकी नजर द्वापर युग से ही रहेगी। हम तो भूल जाएंगे, लेकिन उसे तो पता होगा ना मेरा कौन सा वसन कहाँ है। अब तो भारत में जब जब भारत को कष्ट होगा वो उन आत्माओं को जैसे भेजेगा कि जाओ यहाँ तुम काम करो। बहुत बार भारत में ऐसा हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और वो भारत को बिल्कुल नष्ट करने को तैयार थे और कोई भी तैयार हुए उन्हें रोक दिया। जैसे आप सब जानते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी, अगर वो न होते चाणक्य न होता तो सिकंदर भारत को अपने अधीन कर लेता और वो बहुत बड़ी अधीनता होती द्वापर युग के शुरू में। तब भारत भरपूर था, सत्यु त्रेता का माल अभी कहीं ज्यादा नहीं गया था, यही था, वो सब ले जाते, ये सब मुस्लिम लोग थे सब ले जाते। तो ऐसे में बाबा जब देखता है ऊपर से कि मेरी जन्मभूमि पर मुसीबत आई है, खतरा हो गया है, तो फिर से अपनी उन्हीं आत्माओं को जिनको संगम युग पर उसने तैयार किया था वहाँ उनका आह्वान करके उन्हें उस कार्य में लगा देता है, अपनी शक्तियाँ भी दे देता है, विवेक भी दे देता है। ये बात हमें जाननी चाहिए कि द्वापर युग से भी बाबा हमें बहुत मदद करता आया है। भारत उसकी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, सुना है आप सबने, भारत की भूमि पर भगवान के कदम पड़ते हैं, इसलिए इसका विनाश नहीं हो सकता। सुना है ना, इसका संपूर्ण विनाश नहीं हो सकता। तो हम अपने जीवन को सुखी बनाएंगे बाबा को पहचान कर, बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, वो क्या क्या करने को तैयार है। आवश्यकता है हमें योग युक्त होने की, उससे कनेक्शन जोड़ने की, इसलिए तभी अपने योग की साधना को बहुत बढ़ाएं। फिर मैं कह दूं आपको, जीवन में समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, बीमारी बहुत बड़ी हो, लेकिन सबका समाधान योग बल है। अभी मुझे मिला एक भाई आया हुआ, इनकी पार्टी में ऑपरेशन हुआ, यहाँ बहुत ज्यादा था उसको कुछ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है मेरा बाबा की याद से, एकदम अच्छा। ये तो ऑपरेशन ऐसा मनुष्य घबरा जाए उसे देखकर भी। बहुत बाबा के बच्चों को अनुभव होते, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि बाबा के बच्चों के पास तो इतने अनुभव हैं कि अगर उन्हें लिख दिया जाए तो साईं बाबा के जो अनुभव सुनाते हैं ना वो लगे कुछ भी नहीं है, ठीक है पड़ जाए। वंडरफुल अनुभव बाबा के बच्चों को होते हैं और आने वाले विनाश के समय में जादुई अनुभव होंगे, चमत्कार होने लगेंगे एक एक बच्चे से, लेकिन होंगे उसको जिन्होंने योग बल जमा किया है, जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाया होगा, जिन्होंने बाबा के कार्य में बहुत मदद की होगी। अभी मुझे बताया, मैं शायद तीसरी बार बताया था, रायपुर में मैं था तो एक भाई मेरे पास आया, बहुत लंबा था 6.5 फुट का, तो कहा, मैं थोड़ी चर्चा की थी उत्तराखंड की बात नजदीक में हुई थी, विनाश हुआ वहाँ, तो कहा हम भी घूमने गए हुए थे उत्तराखंड में, केदारनाथ गए थे हम, और इसको क्या अनुभव हुआ कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कार थी इनके पास, पीछे पीछे ये विनाश का खेल चलता रहा। ये ऋषिकेश तक आगे, ऋषिकेश नीचे है फिर लैंड में, जैसे आबु रोड यहाँ से, तो जब ऋषिकेश आ गए तब तो भयानक विनाश शुरू हो गया, ये सब निकल चुके थे। तो बाबा अपने बच्चों की बहुत मदद करता है, बाबा ने कह दिया विनाश की आग लगेगी, सारा संसार जलने लगेगा और बाबा के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन रहेंगे वो जिसके पास योग बल होगा, जो बाबा में संपूर्ण विश्वास रखेंगे, क्योंकि बाबा पर विश्वास की परीक्षाएं बहुत होती हैं और होंगी भी, होनी भी चाहिए, और मैं बहुतों को बाबा में विश्वास का संशय भी होते देखता हूँ, अच्छो अच्छो को बेबी साल ज्ञान में चलते हुए, कहते छोड़ो बाबा को, बाबा कुछ नहीं करता हमारे लिए, ले लो अपना ये बैज वैज सब। वो भूल जाते हैं ये गलती हमारी है, दोष देते हैं बाबा को जो हर समय मदद करता है, उसकी मदद को रियलाइज नहीं करते। तो बाबा ऊपर बैठ के मुस्कुराता है, बस मुस्कुराता है कि देखो इनको मेरे में संशय हो रहा है। तो बिल्कुल ये बात याद रखेंगे, परीक्षाओं के समय टीचर को मदद नहीं करनी है, मदद पहले करनी है पढ़ाने की। तैयार हो गए, अब वो देखता है तुम कितने तैयार हो। यहाँ ये तो नहीं ना नकल करके पास हो जाएंगे, वो काम तो यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ तो बात स्थिति की है। इसलिए बाबा के इस दिव्य कार्य करने की कला को पहचानते हुए सभी अपने जीवन को बहुत सुखी बनाएं, कुछ चीजें बाबा को समर्पित कर दिया करें, कुछ चीजों को खुद अपनी शक्तियों से पार कर लें और कुछ चीजें स्वीकार कर लें। मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया, हमारे वहाँ इंजीनियरिंग के उसमें जब हो जाता ना विंडा प्रोग्राम, तो एक भाई ये फॉर्मूला सुनाता है, उसे मुझे भी सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, भाइयों को ज्यादा काम आएगा, माताएं भी जो इसको समझ लें। फॉर्मूले का नाम है ए बी सी डी फॉर्मूला। मैं बिल्कुल सही भाषा में बताऊंगा, आप लिख लो ए बी सी डी। इस फॉर्मूले को जीवन में यूज करना है। एक अर्थ है, दो अर्थ है, एक है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, दूसरा है अवॉइड करना। कुछ चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं ना, मान लो हम कहीं जा रहे हैं, लोग आपको वहां लड़ रहे हैं, हम उन्हें देखेंगे थोड़े रुक के, हमें जाना है ना, हमारा टाइम हो रहा है, हम अवॉइड करके चल जाते हैं। कुछ चीजों को स्वीकार कर लें, कुछ चीजों को अवॉइड कर दें, ध्यान न दें उन पे। स्वीकार उन चीजों को कर लेना चाहिए जिन्हें हम बदल न सके। ऐसी जीवन में बहुत चीजें हैं जिन पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार कर लें। मेरे को बहुत अच्छी कहानी याद आ रही, सच्ची घटना, लेकिन अभी टाइम हो रहा है। बी बाईपास, साइड से निकल जाए, कुछ चीजों के साइड से निकल जाए जीवन में। सी कैंसिल, कुछ चीजों को कैंसिल रखें जीवन से, जैसे बहुतों ने कैंसिल रख दिया है, भाई हमें मुख से कटु वचन अब नहीं बोलने हैं, हमें बाजार की मिठाई नहीं खानी है, ठीक है, वो तो सबने कर दिया, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, कैंसिल किया हुआ ना। कितनी अच्छी सुगंध आ रही हो बाजार में, हमें नहीं खानी है। और डी डू, करो, डू करो, जो कुछ करना है उसे दृढ़ता पूर्वक करना। कहानी भी सुना देता हूँ, 5 मिनट बचे हैं। तिनसुकिया में गया, तिनसुकिया आसाम के किनारे पर, चीन के नजदीक। एक माँ, माता जी मुझे कहा हमारे घर से बाहर, दुकान थी बहुत बड़ी, ये हॉल जितना है, इसे डबल हॉल था उनका, दुकान थी बड़ी, इतना स्टोर रूम। माँ उसके युगल और वो माता दो ही थी। मैंने इसे बोल लिया, बच्चे बच्चे कितने हैं? तो बेचारी माता भावुक हो गई। मैंने कहा बताओ क्या बात है? कहा एक यही समस्या है, इसके लिए हमने आपको अपने घर में लाया है। अब देखो क्या समस्या हुई उनकी, 1 साल पहले ही 2 यंग बच्चे उनके, 28 साल का 26 साल का, अपने फ्रेंड के साथ कार में निकले रात को इस टाइम, और 5 मिनट में संदेश आया तीनों की मृत्यु हो गई है, कार एक्सीडेंट है, ट्रक से टक्कर हो गई। 5 मिनट में, जो 5 मिनट पहले घर में थे, 5 मिनट में संदेश आया वो अब नहीं है, दोनों की डेड बॉडी आई, तीनों की। इनको 2 ही बच्चे थे, अब देखो माँ बाप दो, इन्होंने अपने को इतना संभाला है, इतनी अच्छी स्थिति रखी है, उसका तो उदाहरण नहीं दुनिया में। इसके 2 यंग बच्चे एक साथ मर जाए और कोई न बचा हो, समझ सकते हैं सब उनकी मनोस्थिति। हाँ हमने आपको इसलिए बुलाया, हमने सब स्वीकार तो कर लिया, जो हो गया ड्रामा में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब मैं भोजन खाती हूँ ना दोनों बच्चों की बहुत याद आती है, फिसल आएगी ना, तो क्या करूँ। तब हमने उनको कुछ विधि बताई कैसे उन्हें वाइब्रेशंस दें, क्योंकि जब एक्सीडेंट में कोई मरता है तो उसको जन्म नहीं मिलता जल्दी, तो उन्हें जन्म मिल जाए उसके लिए उन्हें भोग भी खिलाओ, भोग लगाओ, सेंटर में भी लगवाओ, घर में भी कैसे लगाए, मैंने उनको उसकी विधि बता दी कि उनको रोज आप भोग लगाएंगे, तृप्त हो जाए वो आत्माएं। भोग का बड़ा भारी महत्व है, भोग से बहुत अटके हुए काम भी ठीक हो जाते हैं, और मैंने कहा आपकी याद भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, वो दोनों को पुनर्जन्म भी मिल जाएगा। जब तक उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता ये संभव है वो आत्मा यही भटकती हूँ आपके ऊपर ही, तो आपको भी उनकी याद आएगी और उनका दुख भी आपको प्रभावित करेगा, इसलिए उन्हें रोज आधा घंटा योगदान भी करना है, ये बहुत जरूरी होता है ऐसे में। तो हम अपने को तैयार करें, माताएं भी तैयार करें, ये नहीं योग नहीं लगता, अब कहीं बुद्धि को उलझाना नहीं है, क्योंकि हमें आने वाले समय में संसार को वाइब्रेशंस देने हैं, इतना दुख बढ़ेगा कि अपना दुख तो भूल ही जाएगा, खाली हो जाएगी धरती। सोचो, मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, हमारे भी तो है ना आश्रम बड़े बड़े, यहाँ रिमझिम रहती है, मैं कभी कभी सोचा करता हूँ एक दिन ऐसा भी आएगा यहाँ दो चार लोग बचेंगे बस, बिजली भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ वो दिन भी तो आएगा ना। बाबा कहा करते थे 25-25 कोस पर दिया जलेगा, 50-60 किलोमीटर पर कोई कोई जिंदे रहेंगे लोग, वहाँ दीपक जलेगा, लाइट पे रहेगी नहीं, तो ऐसे में हमें सबको सकाश देनी पड़ेगी। तो बाबा तैयार करता है अपने महान योगी बच्चों को, तैयार हो जाओ संसार को सकाश देने के लिए, जो भी आप में से ये महान कार्य करना चाहते हो, हम सब जानते हैं ये सबसे नहीं होता, वो तो सकाश चाहिए, लेकिन हमें देने के लिए अपने को तैयार करेंगे भाई, अपने को कुमार बैठे बहुत, कुमार ये काम कर सकते हैं। देखो माताएं बुरा न मानना, माताओं से तो कम होगा, पर कुमार इसमें बहुत आगे जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस एक लगन चाहिए कि हमें श्रेष्ठ योगी बनकर ऐसा बल भरना अपने अंदर कि संसार को हम वाइब्रेशन दे सके। मेरा मतलब ये नहीं कि माताएं कुछ करेंगी नहीं, लेकिन अपने परिवार को तो सकाश दे सकती है ना, चलो संसार को न दें, अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाएं कि कम से कम अपने परिवार को रोज सकाश दी जाए, रोज नियम बना दो 15 मिनट अपने परिवार को सकाश देंगे तो परिवारों में समस्याएं नहीं रहेंगी। ऐसे परिवार का आप निर्माण कर सकती हैं योग बल से, तो आपका परिवार समस्याओं से मुक्त हो, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और कुमार और भाई जो कर सकते हैं ऐसा तैयार करें अपने को कि हम लाइट हाउस बन जाएं और संसार को सकाश दे सके। ओम शांति।